शांति। मुरली चल रही थी हाजीपुर में 25/1/67 की प्रातः क्लास, पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बाप खुद ही आकर के कहते हैं, कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, माँ नहीं। कौन कहते हैं? बाप खुद आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाने, गारंटी है कि मुझे याद करो। गीता में ये लगा हुआ है, परंतु गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे, इसलिए तुमको दरकार नहीं है। क्योंकि जो शास्त्रार्थ पड़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम तो हमें शास्त्रों आदि को जानते नहीं हो, उतना नहीं जानते हो, उनको तो कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सब शास्त्र लिखे हुए हैं मनुष्यों के। जो भी कागज में लिखे हुए शास्त्र है वो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से बोलता है। जो भी लगन पिताएं आते हैं वो सब आकर के डायरेक्ट मुख से बोलते हैं, वही सच्चा शास्त्र है। मनुष्यों के द्वारा जो बोला जाता है वो मानवीय शास्त्र है। भगवान आकर के जो खुद बोलते हैं वो भगवान वाक्य कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। गीता अर्थात ज्ञान का गीत। तो तुम सिर्फ बोलो कि हमको तो भगवान कहते हैं, हमको कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखाता है। कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो, तो बाप को ही पति से पावन कहा जाता है। कोई माता का रूप नहीं है जो पति से पावन कही जाती हो, न रूप है और न नाम है। जैसे शास्त्रों में नाम दे देते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माँ ने माँ, बड़ी माँ, जगदम्बा भी उनका नाम दिया हुआ है, जगत की माँ। तो वो कोई पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो मैं बाप हूँ, मैं निराकार राम, मेरा नाम ज्योतिबिंदु शिव है। ये शिव नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम ब्रह्मा पड़ जाता है। राम के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम शंकर पड़ जाता है। तो जब चोला बदलता हूँ तो मेरा नाम बदलता है। इसलिए सिर्फ बोलो कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। क्या पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम? सीता नाम पहले क्यों लगा दिया? राम से भी पहले सीता का नाम लगा दिया, कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लगा दिया, नारायण से भी पहले लक्ष्मी का नाम लगा देते। लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधा, कृष्ण, ऐसे क्यों कह देते? उनमें भी पतित पावन सिर्फ सीताराम को कहते, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते। पतित पावन का जहाँ सवाल आएगा तो राम का नाम आएगा। मना राम के ही आखिरी चोले में प्रवेश करके वो राम राम बाप बनकर के प्रत्यक्ष होता है। सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुनी लगाए रहते हैं, वो भी अपनी मत सुनाते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत हो गए। तो ये गीत कितना सुंदर है जो मुरली में शुरुआत में गीत आता है, जान सजनिया जान नव युग आया, नया युग आ गया, अब अज्ञान की नींद में सोने का टाइम नहीं है। ड्रामा प्लेन अनुसार कल्प कल्प ऐसे ही गीत बनते रहेंगे। जो गीत तुम बच्चों के ऊपर है, इस संगम युग के ऊपर लागू होते रहेंगे। 25 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज, जैसे कि तुम बच्चों के लिए बैठ करके ये गीत बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नए नहीं को राह दिखाओ तो सारी दुनिया नए नहीं हो गई, आंखों की जैसे अंधी हो गई, अज्ञान की अंधी हो गई, कोई की बुद्धि में परमात्मा बाप का सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची का भी ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं। आत्मा तो पार्ट धारी है, ये शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है, लेकिन इस आत्मा ने कितने चोले कितने जन्म में धारण करके पार्ट बजाए वो पता ही नहीं। तो अज्ञान अंधकार में हुई ना, तो गीत भी बनाए हुए हैं, नए नहीं को राह दिखाओ, ये गीत भी अच्छा है। अब प्रभु कोई कृष्ण को नहीं कहा जाता, प्रभु भगवान को कहा जाता है। राम और कृष्ण तो देवताएं थे, कहते प्रभु या ईश्वर निराकार कोई कहेंगे, यहां तुम तो कहते हो शिव बाबा, परमपिता परमात्मा मन परमात्मा। परम पिता है, पिताओं में सबसे बड़ा पिता है। इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं पिता बनती हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं के बीच में महान से महान पार्ट पिता का बजाने वाले धर्म पिताएं कहे जाते हैं। वो धर्म पिताएं परम पिता नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि उन धर्म पिताओं का भी कोई पिता है। धर्म पिताएं अपने एक सीमा में बने हुए धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं, उनके अपने अपने धर्म खंड हैं। जैसे क्राइस्ट का धर्म खंड यूरोप है, अमेरिका है, मोहम्मद के धर्म खंड ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इब्राहिम का भी अपना धर्म खंड है, अरब देश, तो वो सीमा में बंधे हुए हैं। लेकिन इन धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप मैं हूं, मतलब शिव सब धर्म पिताओं का भी पिता है। सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, जिसे प्रजापिता आदम या एलिव एडम कहते हैं, उसका भी वो पिता है, तो उसको कहते हैं परम पिता। फिर साथ में कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो परम पिता पहले परमात्मा बाद में, ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शिव जन्म मरण के चक्र में न आने वाले परम पिता को कहा जाता है, और शंकर बड़े से बड़े देवता का नाम, शंकर शिव नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा बाप शिव जब आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। देवताओं में जो बड़े से बड़ा पार्टधारी देवता है उसका नाम शंकर दिया जाता है। कहते भी हैं देव देव महादेव, तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा, परमपिता शिव ज्योति बिंदु का नाम, उनका टाइटल है परमपिता। वो शक्ति पर आकर के सारी आत्मा मात्र का पिता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य आत्माओं का पिता है। जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी है सबका पिता है, उसका पिता कोई नहीं। तो बताया कि परमपिता परमात्मा मन परमात्मा, ऐसी आत्मा जो आत्माओं के बीच में परम पाठधारी, किसके बीच में? आत्माओं के बीच में, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वालों के बीच में जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है वो है परमात्मा। शिव का टाइटल नहीं है ये, शिव को कहेंगे परमपिता। वो शिव ज्योति बिंदु जब परम पाठधारी में प्रवेश करता है, हीरो पाठधारी में, राम बाप कहो प्रजापिता कहो शंकर कहो, उसमें प्रवेश करता है तब परमात्मा कहा जाता है। कैसे है परमपिता परमात्मा? है तो वो भी आत्मा ही ना, ये अर्थ भी तुम्हारे बिना और कोई जानता नहीं है। ऐसे ही कैसे रहते हैं परमपिता परमात्मा? भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए, ये बिल्कुल सिंपल बात है, अलख और भी बस। अलख उर्दू में पहला अक्षर होता है अलख, खड़ा हुआ डंडा, और दूसरा अक्षर होता है पड़ा हुआ डंडा। खड़ा अलख, पड़ा हुआ बे। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें अलख और बे ये है जिनका नाम पड़ता है परम पिता परमात्मा या शिव शंकर। कहा जाता है अलख, अलख माने खड़ा हुआ। जब से इस सृष्टि पर आता है और अंत तक जब तक शक्ति को परिवर्तन करता है तब तक वो खड़ा रहता है, पुरुषार्थ में गिरता नहीं है, पड़ नहीं जाता है। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, शरीर छोड़ दिया, आखिर हुआ गिर गया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध गया, लेकिन वो सेवक जिस मुकर्रर रथ में आता है वो कब नहीं गिरता? गिरने का तो सवाल ही नहीं, गुप्त तो हो सकता है वो भी बच्चों के कल्याण के लिए, क्योंकि माला बनानी है तो अलग कहेंगे आज से अंत तक खड़ा हुआ, और बे कहेंगे जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो सब पुरुषार्थ में गिरती पड़ती पाठ बजाती। आज निश्चय बुद्धि कल निश्चय बुद्धि हो जाती, आज श्रेष्ठ पाठ बजाती है कल नीचे पाठ गिर जाता है, क्योंकि सब ब्रह्मा की औलाद है। ब्रह्मा की जात कही जाती है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, प्रजापिता का दिन और रात नहीं कही जाती। मतलब जिस प्रजापिता में सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ बना करके प्रवेश करता है वो कभी गिरने वाली बात नहीं है, सदैव अटल अखंड डोल है जिसकी यादगार ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ध्रुव माना एक ही जगह पर स्थिर रहने वाले, और जो भी सितारे हैं जड़ सितारों की बात नहीं है, आसमान के सितारों की बात नहीं है, तुम बच्चे ही हो धरती के सितारे। तो ये सितारे जो है जैसे आसमान के सितारे ध्रुव तारे के आसपास घूमते रहते, ऐसे ही तुम बच्चे 500 करोड़ जो भी सितारे हो आत्मा रूपी वो ध्रुव तारा के आसपास घूमते रहते। कोई छोटा चक्कर काटते हैं, कोई बड़ा चक्कर काटते हैं, कैसे भी है चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, त्रि सज्जनों में कितने चक्कर लगाए। अभी भी संगम युग में कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो कितने निश्चय निश्चय के फेरे लगते हैं। आज निश्चय पैदा होता है, कल निश्चय हो जाते हैं। बाप कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जैसे जीते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते वो जैसे समझ जाते। तो ये जन्म मरण का चक्र यहाँ भी चलता है और फिर 84 जन्मों में भी चलता है। तो यहाँ तो बाप बिल्कुल सिंपल बातें बताते हैं, अलग और वेद, बस अलग अल्लाह और बे बादशाही। बादशाही किसी की हमेशा नहीं चलती है। कहते भी हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो बादशाह बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और राजा बन के जब अहंकार करता है तो नीचे गिर जाते हैं। राजा भी बनते हैं फिर नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि राजाओं से अहंकार में आकर के पाप कर्म बहुत हो जाते हैं। जब पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो नीचे गिरते हैं। एक ऐसा है जो कभी गिरता नहीं है, ऊपर से नीचे तो आता है लेकिन नीचे आने के बावजूद भी किसके नीचे रहती है। तो सिंपल बातें हैं, बाप को याद करो, ऐसे बाप को याद करो जो कभी नीचे नहीं गिरता है, पड़ता नहीं है, बादशाह भी नहीं बनता है। तुम बच्चों को बादशाह बनाता है। इसलिए देवताओं के बीच में एक ही देवता ऐसा है जिसे बैगन के रूप में दिखाया जाता है। बैगन के रूप में वेश है, लेकिन जो भी भक्त आते हैं उसके सामने आकर कहते हैं भरदे झोली भरदे झोली, माने ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए उसके पास आते हैं। तो ऐसे बाप को याद करो जो बेताज बादशाह है। तुम बच्चों तो ताजधारी बादशाह बनते, आज ताज पहनते हो कल उतर जाता है। ताज स्थूल भी होता है और ताज बेहद का भी होता है। भगवान बाप जब आते हैं तो बच्चों को आकर के जिम्मेवारी का ताज देते हैं। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनको जिम्मेवारी मिलती है कि हम पंच दुनिया बनाएंगे। पतितों को पावन बनाने में बाप का पूरा सहयोग देंगे, पूरी सेवा करेंगे। तो इस सेवा की मेवा जो बच्चे खाते हैं वो बच्चे बड़े जब बादशाह बनते हैं। ये बादशाही की पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई और कोई मनुष्य मात्र ने आज तक नहीं सिखाई। दुनिया की हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजा किसने बनाया, कब बनाया, ये पढ़ाई कब पढ़ाई, कोई जवाब नहीं दे सकता। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि कलयुग के अंत में और सत्युग के आदि में जो संगम का टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के टाइम में मैं आकर के बच्चों को राजाई का वर्षा देता हूं। ये राजाई का वर्षा हो, कोई पढ़ाई कोई कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं दिया जाता, ये पढ़ाई पढ़ाता ही नहीं कोई। बाप ने आकर की पढ़ाई पढ़ाई है, संगम युग में आकर की पढ़ाई है। 5000 साल पहले भी पढ़ाई पढ़ाई थी, अभी फिर आकर की पढ़ाई रहती। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई जिसको हम नाम दें गॉडली पढ़ाई। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे दुनिया कुत्तों मिसल बंदरों मिसल बनती चली जाती। ऐसे बंदरों की सेना लेकर के फिर मैं रावण के ऊपर तुम बच्चों को विजय पहनाने सिखाता हूँ, क्योंकि लड़ाई के बगैर राजा ही मिलती नहीं है। वो लड़ाई तो स्थूल लड़ाई लड़ते, खून खराबी की लड़ाई लड़ते, میں ایسی لڑائی لڑانا نہیں سکھاتا, میں تو تم کو بتاتا ہوں, تم اپنے وکاروں کے اوپر بھی دیتا ہوں, کام کروز لوبھ موہ اہنکار ان کے اوپر بھی دیتا نہیں ہے. کوئی استھول ارتھت نہیں ہے ہماری, کوئی استھول لڑائی نہیں ہے ہماری, اندر کی لڑائی ہے. جو پانچ وکاروں پر جیت پہنیں گے, اپنی اندریوں کو کنٹرول کریں گے, وہ اتنے بڑے راجا بنیں گے. اس میں کوئی کو دکھ دینے کی بھی بات نہیں ہے, تم سرگ کے مالک ضرور بنے گی. پرنتو یہ لکشمی نارائن سرگ کے مالک سمپورن نیوکاری تو تھے نا, سب دیوتاؤں کی گلانی کریں گے. ایسا کوئی 33 کروڑ دیوتاؤں میں سے نہیں ہے جس کی گلانی نہ کرتے ہو, ایک دیوتا ایسا ہے جس کی کوئی گلانی نہیں, نارائن کی کوئی گلانی نہیں. ارے گلانے کا کوئی کام کیا ہوگا نارائن بننے کے بعد تو گلانی ہوگی, کام ہی نہیں کیا تو گلانی کیسے ہوگی. کام کے آدھار پر نام پڑتا ہے, کام کیا ہے, نارائن, نار مانا گیان جل, آئن مانا گھر. وہ ایسے گیان جل کے گھر میں رہتا ہے جہاں اگیان کا نام نشان نہیں ہوتا. پرنتو یہ لکشمی نارائن جو سرگ کے مالک سمپورن نروکاری تھے, تو باپ کو یاد کرنے سے ہی تو بنے نا, تم بھی ایسے سمپورن بنیں گے. اب جتنا جو یاد کریں گے اتنا بنیں گے. کس کو یاد کریں گے؟ ایسے کو یاد کریں گے جو سدیو اونچتے اونچے ہے, اونچ سے اونچ پاٹدھاری ہے. کہتے ہیں نا اونچا تیرا دھام, اونچا تیرا نام, اونچا تیرا, اونچ سے اونچ اس کو کہا جاتا ہے جو اونچے کرم کرتا ہے. کرم نیچے ہو تو اونچا نہیں کہا جائے گا. اونچ کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھکتی مارگ میں امرناتھ میں بیٹھا ہوا دکھائی دیا گیا, کیلاش پروت پر بیٹھا ہوا نہیں, اونچی اسٹیج میں ہے. اس دنیا میں بل کتنے بھی حالات خراب ہوتے رہے وہ اونچی اسٹیج میں ہے, اس کو دیکھ کر کے دوسرے پرشارتھی بچے بھی اونچی اسٹیج بناتے ہیں. دیکھنے ماتر سے ہی اندر میں خوشی کی لہر توڑ جاتی ہے. تو سارا مدار یاد پر ہے. اونچ سے اونچ کو یاد کریں گے تو اونچ سے اونچ راجا بنیں گے. اونچ سے اونچ راجا کا نام بتائی دیا, کیا بتایا, نارائن. اب پھر نمبر لائے گے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اسکول میں اسٹوڈینٹ سمجھتے نہیں ہیں کیا کہ ہم کم پڑھتے ہیں اور یہ دوسرے ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں اور یہ فون فیل ہونے والے ہیں, جو نہیں پڑھتے ہیں تو فیل ہو جائیں گے, جو پورا اٹینشن نہیں دیتے ہیں تو پچھاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں, جو پورا اٹینشن دیتے ہیں وہ ٹیچر کے آگے آ کر کے بیٹھتے ہیں, نزدیک آ کر کے بیٹھتے ہیں. بھکتی مارگ میں بھی نام دے دیا ہے گروؤں نے, اپاسک گرو بھکتی مارگ کے, وہ تو منتر جاپ کرتے ہیں, شیو اہم, ہم ہی شیو بھگوان ہیں, تو وہ پڑھائی پڑھاتے ہیں. جن کو پڑھائی پڑھاتے ہیں منشیوں کو, ان کے نزدیک جا کے بیٹھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اپاسک. اوپر مانے نزدیک, آسک مانے بیٹھنے والے, مانے نزدیک آ کر کے جو جتنا گرو جی کے بیٹھے گا گرو جی کی آنکھوں میں وہی چڑھے گا. اب واسطو میں یہ بھکتی مارگ میں جو بھی باتیں چل رہی ہے وہ فالو کہاں سے کی ہے؟ اس سنگم یگ میں جب بھگوان آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جس تن میں مقرر رتھ میں آیا ہوا ہوں, وہ پرشارتھی جیون کو جو جتنا نزدیک پہنچے گا پرشارتھ میں وہ اتنا ہی اونچ پد پائے گا. سب ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے. تو بابا سمجھتے ہیں ایسے ایسے گیت بچوں کو گھر میں رکھنے چاہیے اور سے بھی تو بتائے میں نے ان کو راہ دکھاؤں. ان کو سننے سے بھی بہت ریفریشمنٹ آ جائے گی, کسی کو ان پر سمجھا بھی سکیں گے کیسے مایا کا پھر سے پرچھایا پڑ جاتا ہے. ساسوں آدمی میں تو یہ باتیں ہیں نہیں کہ کلپ کی آئے 5000 ورش ہے, صرف لکھ دیا ہے کہ 5000 ورش پہلے مہابھارت گرہ یدھ ہوا تھا کورو پانڈو یادووں کے بیچ میں, لیکن پھر وہ اس کو دواپر یگ میں لے گئے. اب دواپر یگ میں تھوڑے ہی میں آتا ہوں, دواپر کے انت میں اگر کرشن بھگوان کا روپ دھارن کر کے آ جاؤں تو کیا بھگوان آ کر کے کلیوگ کی استھاپنا کرتا ہے؟ کلیوگ تو پاپی یگ ہے. ارے بھگوان آئے اور پاپی یگ کی استھاپنا کر کے جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ بھگوان کے آنے کا تو فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا پلٹ جائے, پاپی کلیوں کو بدل کر کے پنیہ آتماؤں دیوتاؤں کی دنیا ستیہ کو بن جائے. یہ کام کوئی منشیہ ماتر نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی دھرم پتائیں آئے, مہاتمائیں آئے, بڑے بڑے ودوان پنڈت آچاریہ آئے, دنیا نیچے ہی گرتی چلی گئی. دنیا اوپر نہیں اٹھی, کام کروھ لوگ وہ اہنکار دنیا میں بڑھتی چلے جاتے ہیں, لڑائی مارا ماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نرک کو سورگ بنانے والا کوئی منشیہ ماتر نہیں. یہ تو بھگوان کا کام ہے کہ جب اس شکتی پر آتا ہے تو ایسے منشیہ جنہیں نر کہا جاتا ہے, نر ایسی کرنی کرے تو نر سے نارائن جیسا بنے. کیسی کرنی؟ جو کرنی بھگوان آ کر کے سکھاتا ہے, کرم کی گوہی گتی بھگوان آ کر کے سکھاتا ہے کہ ایسے ایسے کرم کریں گے تو ایسے دیوتا بنیں گے, اور اگر اس کے وپریت کرم کریں گے تو راکشس بنیں گے. ابھی بھگوان آیا ہوا ہے, جنم جنمانتر کے راکشسی چہرے اور دیوتائی چہرے ابھی پرتکش ہونے والے ہیں, اور شاستروں میں ان کا گائے ہوگا پتا چلے گا, ابھی ابھی معلوم پڑے گا راکشس راکشسیاں کون بننے والے ہیں اور دیوی دیوتا کون بننے والے ہیں, سب کچھ پتا چل جائے گا. آتما اگر پاٹدھاری ہے تو پاٹدھاری کو رنگ منچ پر اپنے پاٹ کا ہی اگر یاد نہ رہے تو بھگوان باپ کہتے ہیں ایسا پاٹدھاری تو بے وقوف ہے. آتما یہ آتما جیوتی بندو جو برکوٹی کے مدھی میں وراجمان ہے, جس کی روشنی ناکوں سے نکل رہی ہے, وہ آتما پاٹدھاری شریر روپی چولے کو چھوڑ جاتی ہے اس لیے آنکھیں بٹن ہو جاتی ہیں. ایسی آتما میں ایسا جان کا تیسر نیت پرجلت ہو جائے جو اس کے 84 جنموں کا بھی سارا ساکشاتکار اسے ہو, جان کے آدھار پر ساری بات 84 جنموں کی بدھی میں کلیئر ہو جائے. منشیہ کو تو پتا ہی نہیں ہے پورے جنم کا بھی اگلے جنم کا بھی. بھگوان آ کر بھی بتاتے ہیں, ہے ارجن تو اپنے پورے جنموں کو اگلے جنموں کو نہیں جانتا, میں آ کر کے تیرے کو بتاتا ہوں. گیتا میں بولا ہے نا, تو جو گیتا کے وچن ہے وہ تو کاغذ میں لکھے ہوئے, ابھی تو پریکٹیکل میں بھگوان آ کر کے ہم کو سکھائے رہا ہے, بتایا رہا ہے کہ تمہارے اوپر مایا کا پرچھایا پڑا ہوا ہے, اس پرچھائے کو جب تک ہٹاویں گے نہیں, میری مت پر نہیں چلیں گے تب تک ہٹے گا بھی نہیں. 5000 ورش کی جو بات لکھی ہوئی ہے یہ مہابھارت کی بات ہے, कि महाभारत आज से 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन उसको द्वापर युग में ठोक दिया है तो कल्प की आयु आधी रह जाती है। भगवान बाप कहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं हुआ, ये महाभारी महाभारत युद्ध न द्वापर में हुआ और न द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में मैं आता हूँ। मैं तो आता हूँ कलयुग के अंत और सत्युग के आदि, आदि है कलयुग का अंत। कलह क्लेश दुनिया में बढ़े पड़े, ऐसे कलह क्लेश की दुनिया जब बन जाती है, जब सब मनुष्य मात्र दुखी हो जाते हैं, तन से भी दुखी, धन से भी दुखी, मन से भी दुखी, मित्र संबंधियों से भी दुखी, संपर्कियों से भी दुखी हो जाते हैं, तब ऐसी दुखी सृष्टि को आकर के नंबर वार सुखी बनाना ये मेरा काम है। और इस काम में जो बच्चे सहयोगी बनते हैं वो नई सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाकी 5000 वर्ष का सृष्टि का जो कल्प है, जिसे 4 युगों का मेल कहा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का मेल है कल्प। एक कल्प में 5000 वर्ष होते हैं। ये 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आया था, भगवान ने आकर के पांडवों को नई दुनिया का राज्य दिया, उन्होंने तो शास्त्रों में कलयुग दिखा दिया, पापी युग। अरे भगवान आकर के पापी युग का राज्य थोड़े देगा, भगवान तो आकर के सतयुग का राज्य देता है। सतयुग में लिखते भी है शास्त्रों में कि सतयुग में नारायण का राज्य था, कहते भी है कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वही नारायण है वही वासुदेव है, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर कृष्ण को द्वापर युग में ठोक देते। ऐसा मति भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि ये शास्त्र अलग अलग मनुष्यों के लिखे हुए हैं, किसी एक ने नहीं लिखे हैं। जिसने जो आया अपनी मत शास्त्रों में लिखी और संसार में फैलाया, अपना अपना मान मर्तबा लेने के लिए शास्त्र लिखते रहे। भगवान बाप तो साधारण वेश में आते हैं, जैसे गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को मूलमति मनुष्य नहीं पहचान पाते। जो भोले वाले बच्चे हैं वो मेरे को पहचान लेते, देखने में भी आता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांवड़े के लोग भगवान को पहचानते हैं, और शहर के बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स, वो नहीं पहचान पाते, वो पहचान नहीं पाते, पहचानेंगे भी नहीं और कभी पहचाना भी नहीं था। बात कहते हैं मैं तो गरीब निवासी हूँ, मैं गरीबों को पकड़ता हूँ, गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूँ। बाकी 5000 वर्ष की बात नहीं है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, नहीं, 5000 वर्ष पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था वो किसी समय की बात, कलयुग के अंत की बात है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, क्राइस्ट को 2000 साल हो गए, और क्राइस्ट से पहले 3000 साल तो कितने साल हुए, 5000 साल हो गए। तो इससे साबित होता है कि पहले जन्म का जो राज्य है, पहली चहली जो दुनिया तैयार हुई थी, नई दुनिया, वो 5000 साल पहले तैयार हुई। सिंध, हैदराबाद, सिंध, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ये विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों की मिली हुई चीजों से भी ये साबित होता है कि 5000 वर्ष का ये कल्प है, लाखों वर्ष की दुनिया नहीं है। 5000 वर्ष की दुनिया होगी तो उसका हिसाब बताया जा सकता है, कि सतयुग में हमने कैसे कैसे कितने कितने जन्म लिए, त्रेता में कितने जन्म लिए, द्वापर में कितने जन्म लिए, कलयुग में कितने जन्म, 84 का पूरा चक्कर बताया जा सकता है। अगर लाखों वर्ष का कल्प बता दिया जाए, ये सारा सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का बता दिया जाए तो फिर कोई हिसाब ही नहीं दिया। इसलिए वो विद्वान पंडित आचार्य भी बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने 1250 वर्ष का जो युग था उसको देवताओं के उम्र मिला करके उसे गुणा करके लंबा लंबा कर दिया ताकि कोई पूछे ही नहीं। लाखों वर्ष की दुनिया का चक्र होगा तो कोई कोई पूछे, छोटा चक्र है। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि तुमने सतयुग में बहुत थोड़े जन्म लिए, हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। ऐसे नहीं कि छोटे बड़े युग होते हैं, सतयुग में 1250 वर्ष में तुमने 8 जन्म लिए क्योंकि तुम्हारी आयु लंबी होती थी, शरीर बहुत स्वस्थ होते थे, कंचन जैसी काया होती थी। और त्रेता में तुमने 12 जन्म लिए क्योंकि वहां 2 कलाएं कम हो जाती, राम की 14 कलाएं गाई जाती। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पैदा कर देते हैं, अधर्म और धर्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, अनेक राज्य पैदा हो जाते हैं, अनेक मतमतांतर, अनेक भाषाएं पैदा हो जाती। तो द्वापर युग में मनुष्य थोड़ा दुखी होना शुरू होते हैं, इसलिए वहां 21 जन्म होते हैं। दुख भोगने से मनुष्य की आयु घट जाती है, सुखी आत्मा ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है। कलयुग में आते आते दुगने जन्म हो जाते हैं द्वापर है, भी कलयुग भी 1250 वर्ष का, लेकिन वहां मनुष्यों की आयु औसतन 30-40 वर्ष रहती है, 42 जन्म होते हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म, और एक जन्म ये संगमी था। कुल टोटल मिलाकर के 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के होते हैं। उन्होंने 84 लाख योनियों में जोड़ दिया, 84 लाख योनियां तो होती है लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है। ये नहीं कि मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो कोई पशु पक्षी बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, नहीं, मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है। आम का बीज होगा तो आम का ही दर्द पैदा होगा, बबूल का बीज होगा तो बबूल का ही दर्द पैदा होगा। ये आत्मा भी एक प्रकार का बीज है, चैतन्य बीज है, सितारे मिसल आत्मा है। एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश होती है, मनुष्य गर्भ में ही प्रवेश करेगी। पाप कर्म भोगने के लिए भी मनुष्य होने में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं पशु पक्षी बनना पड़े तभी दुख भोग सकता है। क्या मनुष्यों में दुख नहीं होते? मनुष्यों को तो ज्यादा इंद्रियां होती है इसलिए ज्यादा दुख भोगते हैं, जिन जानवरों को कम इंद्रियां होती है तो कम इंद्रियों से कम दुख भोगेंगे। दुख और सुख भोगना ये शरीर के द्वारा होता है, शरीर है तो सुख भोगा जाता है, शरीर है तो दुख भोगा जाता है। भगवान बाप आकर के अभी प्रैक्टिस कराते हैं, क्या प्रैक्टिस कराते हैं कि मन को तुम ऐसा एकाग्र करो जो तुम सुख भोगो, शांति भोगो लेकिन दुख न भोगो। इसलिए बाप कहते हैं कि तुमको दुख देना नहीं है और दुख लेना भी नहीं, ये पक्का कर देना। कोई हमें दुखी करता है, दुखी करने की बात बोलता है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। कोई मारपीट करने के लिए आमादा हो जाता है, भाग जाओ। अरे कृष्ण भगवान भी भागते फिरे थे कंस के डर से, शंकर भगवान थे वो भी भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरे, राम भगवान थे जंगल में रहे जाकर के, तो हम कौन बहुत बड़े आदमी हैं? हम अपनी वीरता दिखाने के लिए ऐसे आड़े क्यों रहे जो हमको हिंसा करनी पड़े? अहिंसा परमो धर्म है कहा जाता है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। और ये क्षेत्र जो है ये तो महात्मा बुद्ध की धरणी है। महात्मा बुद्ध ने तो नारा ही दिया था क्या, अहिंसा परमो धर्म, कोई पर वाचा से भी हिंसा नहीं करनी। मारपीट करके हिंसा करना वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। मन के संकल्पों से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना। कोई कहे ये हमारे प्रति इतना बुरा सोचता है, इतना बुरा करता है और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कर्मों की गुली गति है, हमने किसी को दुख दिया होगा तो वो हमको इस जन्म में दुख देगा, हमने किसी को बुरा भला कहा होगा तो वो हमको बुरा भला कहेगा। ये नियम है कि हम जिस आत्मा को जितना इस जन्म में सुख देंगे वो रिटर्न में हमको सुख देगा, देना ही पड़े। किसी आत्मा को या कोई भी आत्मा को हम जितना स्नेह प्यार देंगे वो स्नेह प्यार हमें देना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों हो। इसलिए हमारा काम है दूसरों को सुख देना, शांति देना। दूसरा कोई क्या करता है ये देखने की चीज नहीं, भगवान बाप ये नहीं सिखाते। हमारी आत्मा का सुधार चाहते, आत्मा सुधरेगी तो जग सुधरेगा। हम खुद बिगड़ते हैं तो वाइब्रेशन खराब होता है, उस वाइब्रेशन में जो भी आते हैं सब बिगड़ते हैं, जानवर भी बिगड़ते हैं। जानवरों की आत्मा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती, पशु पक्षी है, कीड़े पतंगे हैं, ये भी शत्रु प्रधान दुनिया में सात्विक होते हैं, तामसी नहीं होते हैं जीव जंतु। वह जो शत्रु प्रधान योनियां होंगी वो होंगी, तम प्रधान योनियां कलयुग में होती। तो अब नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं से मनुष्य शक्ति की चुनी हुई आत्माएं वो ही रहेंगी। उन आत्माओं के लिए 9 लाख की संख्या लुटी हुई, कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं। और ये आत्मा रूपी 9 लाख चैतन्य सितारे हैं जो भगवान बाप के आने पर इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं कि जब दुनिया में विनाश होता है तो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में हाय हाय करती है और वो 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारते हैं सारी दुनिया। कितनी ऊंची नजर से देखे जाते हैं ऐसे 9 लाख सितारे जो ऊंची स्टेज में चमकेंगे, नंबर वार सितारे हैं। उनमें कोई सितारे ऐसे हैं जिनके अंदर अपनी चमक है, कोई ऐसे है जो दूसरे से चमक लेकर के सिर्फ दूसरों को चमक मारते हैं। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, कोई खुद ही चमकते हैं टिमटिमाते हैं, कोई खड़े रहते हैं, तो जो टिमटिमाते हैं उनमें अपनी चमक है। जैसे सूर्य है तो सूर्य में अपनी रोशनी है, और चंद्रमा, चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा चमकता है। ऐसे और भी सितारों की बात, तो बनना क्या है, चंद्रमा जैसा बनना है या सूर्य जैसा सितारा बनना है? सूर्य जैसा बनना है। तो दुनिया में शास्त्रों में ये कथाएं आ गई हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। जो सूर्य जैसा पार्ट बजाते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं वो सूर्यवंशी है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, क्या चंद्रमा को नहीं देता, इस्लाम वंशियों को नहीं देता, बौद्धि वंशियों को नहीं देता, क्रिश्चियन वंशियों को पहले ज्ञान नहीं देता, किसको देता हूँ ज्ञान, सूर्य को ज्ञान देता हूँ। वो तो जड़ सूर्य, इस धरती के सितारों में से कोई आत्मा है राम वाली आत्मा जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाती है, उस मुकर्रर अंत में प्रवेश करके परमात्मा हम बच्चों को अनेक जन्मों की हुई गति सुनाता है। अब ये हुई गति जब सुनाता है और पढ़ाई जो पढ़ते हैं रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं पंक्चुअल होकर के पढ़ते हैं तो जरूर ऊंचे नंबर में पास होंगे, ऊंचे नंबर में पास होंगे तो बड़े से बड़े राज्य अधिकारी बनेंगे। चित्रों में राम के आगे शिव दिखा देंगे, मंदिरों में जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें शिव के आगे मुख्य स्थान पर शंकर को दिखाते हैं और आजू बाजू चारों तरफ छोटे बड़े सभी देवताएं दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि शिव शंकर में या राम में प्रवेश करता है, शिव को अपना शरीर नहीं है, वो जन्मण के चक्र से न्यारा है। वो भी अगर जन्मण के चक्र में आने लगे तो हम आत्माओं को इस दुनिया से दुख की दुनिया से छुड़ाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो एक आत्मा ऐसी है तुरिया जो जन्मण के चक्र से न्यारी। वो सृष्टि पर जब आती है तो गर्भ से जन्म नहीं लेती क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कोई अपना हिसाब किताब ही नहीं है, उसका हिसाब किताब हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अजन्मय है, देह का बंधन उसको लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कर्मों की गुह्य गति को 100% जानने वाला है। 100% जो जानने वाला होगा उससे कोई कर्म कभी ऐसा होगा ही नहीं जो दुख सुख पैदा करे, न वो इस सृष्टि पर सुखी होता है न दुखी होता है, सुख दुख से परे है वो, सिर्फ मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है। कितनी आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करता है? रुद्रमाला यादगार बनी हुई है, रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणके होते हैं, रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख कहो मुख कहो, वो रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने होते हैं, वो मुख लेने की यादगार है। कोई में एक मुख होता है, कोई में दो, कोई में चार, कोई में आठ, कोई में दस, कोई में पंद्रह, ये अनेक मुखों वाले जो रुद्राक्ष हैं उनमें अनेक महात्माएं प्रवेश करती है और शिव भी प्रवेश करता है। पता नहीं चलता कि शिव ने कब प्रवेश करके कार्य किया और दूसरी आत्माओं ने प्रवेश करके कब कार्य कर दिया, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। तो 108 आत्माएं ऐसी हैं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वही मणके बनते हैं जिनमें वो शिव प्रवेश करता है, प्रवेश करके सारा ज्ञान का राग उन आत्माओं की बुद्धि में क्लियर करता है। लेकिन सब में एक जैसी प्रवेशता नहीं होती, जो जितना अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा होगा, एक ही मत पर चलने वाला बच्चा होगा उसमें शिव की प्रवेशता जाती होगी, और जो अनेकों की मत पर चलने वाला होगा उसमें धीरे धीरे प्रवेशता औरों के मुकाबले कम होगी। है वो 108 आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं, सारी मनुष्य शक्ति में जो भी धर्म फैले हुए हैं उन सात धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग में आकर के परमात्मा के दरबार में इकट्ठी होती है। अब वो अनेक अलग अलग धर्मों से आई हुई आत्माएं हैं तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। सबको पता है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के बौद्ध ही बने महात्मा बुद्ध के आने पर, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सन्यासी बने, हिंदू ही कन्वर्ट हुए तो सिख बने। जो हिंदू है जो पहले देवता थे वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, اس لیے مسلمان کہتے ہیں یہ تو کافر ہے، ہندو کہتے ہیں کافر، کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی دھرم ہی مانی نہیں ہے. اب بھگوان باپ آ کر کے بتاتے ہیں، بچے تم اپنے دھرم کو بھول گئے، کرم کو بھول گئے، اپنے دھرم پتا کو بھول گئے. وہ دوسرے دوسرے جو دھرم ہے وہ دھرم والے جانتے ہیں کہ ہمارا دھرم پتا کون ہے، کرسچن جانتے ہیں ہمارا دھرم پتا کرائسٹ ہے، بودھی جانتے ہیں ہمارا دھرم پتا بدھ ہے، سب اپنے اپنے دھرم پتا کو جانتے ہیں، اپنے دھرم کے بارے میں جانتے ہیں، پوری ہسٹری ان کو پتا ہے. تم بچے بالکل بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیونکہ تم پرانے تھے. پرانے جو چیز جتنی جاتی پرانی ہو جاتی ہے اتنی تامسی ہو جاتی ہے. اس ہستی میں تمہارا دھرم سب سے زیادہ پرانا ہے. اس لیے تم اگر پوری پڑھائی پڑھیں گے تم دیوی دیوتا سناتن دھرم کے پکے بن سکتے ہو. ایسے پکے بن سکتے ہو کہ 5000 ورش کے ششی چکر میں تم کاویری ودرمیوں کے چکر میں آ کر کے دوسرے دھرم میں نہیں گریں گے. جو کہتے ہیں پر دھرمو بھیاوہ سودھرمین دھرم سے، اپنے دھرم میں مر جانا اچھا، دوسرے دھرم کا سویکار کرنا یہ بہت خراب بات ہے، بہت دکھ بھوگنے والی بات ہے. جو دوسرے دھرم میں کنورٹ ہوتے ہیں ان کو داس داسی بنا کر کے رکھتے ہیں. بھگوان باپ کہتے ہیں تم کوئی داس داسی تھوڑے ہی بننے والے بچے ہو، میں تو تمہیں راجا بیٹا بنانے کے لیے آتا ہوں. جنم جنم انتر کی راجا ہی آ کر کے سونپتا ہوں. راج گھرانے میں تم کو جنم لینا چاہیے، لیکن کب؟ جب ایشوریہ پڑھائی پڑھیں گے تب، جب ایشور کو پہچانیں گے تب. ایشور کو پہچاننا، ایشور کو جاننا اور اس کی مت پر چلنا، اس کے مت کے انکول کرم کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. سب بنی بنائی ہے. پچھلے 63 جنموں میں جن آتماؤں نے رام کرشن جیسی شیش آتماؤں کا انیک جنم سنگ کیا ہے، وہی آتمائیں انیک جنموں کا سنگ کا رنگ کا سنسکار ہونے کے کارن سنگ یوگ میں آ کر کے پرماتما باپ کی مت پر چلتی ہے. لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون سنگی ساتھی رہا کون نہیں رہا. ہاں جب پڑھائی پڑھتے ہیں اور اس کا رزلٹ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ آتمائیں اتنی شریشٹھ سنگ والی ہے. سنگ تارے کسنگ پورے. شریشٹھ کا سنگ کرنا چاہیے، دشٹ کا سنگ نہیں کرنا چاہیے. شریشٹھ سے شریشٹھ اس سرشتی پر ابھی سنگ یوگ میں ہے پرماتما پاٹ دھاری، جسے کہتے ہیں پرم پتا پرماتما. لیکن وہ پرم پتا تو جیوتی بندو ہے. اس جیوتی بندو کا بڑا آکار شیولنگ مندروں میں دکھایا گیا ہے. جیوترلنگم بھی کہتے ہیں. وہ لنگ ان آنکھوں سے نہیں دکھائی پڑتا. جیسے ہم جیوتی بندو آتما ہے، اتی سوکشم ہے، آتما کو نکلتے ہوئے اس شریر سے جب آتما نکلتی ہے تو دیکھ ہی نہیں جاتی، اتنی سوکشم آتما ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ خون نکالتے ہیں ایک بوند اور اس خون میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ملیریا کے کیٹاڑو بھرے پڑے، تو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ان کیٹاڑوں کو؟ نہیں دیکھ سکے. تو جو کیٹاڑو اتنے سوکشم نہیں ہے جتنی آتما ہے، تو آتما تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی. آتما کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو آتما کو اب آپ پرماتما سپریم سول پرم پتا اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے پھر تیسرا نیتر چاہیے. تیسرا نیتر جس کو ہوگا وہی تیسرا نیتر دے سکے گا. تیسرا نیتر ہے گیان کا نیتر. اس لیے شنکر جی کو تین نیتر دکھائے جاتے ہیں، دیویوں کو بھی تین نیتر دکھائے جاتے ہیں. ضرور ہے شیو جب سستی پر آتا ہے तो कोई कन्याएं माताएं उसकी सहयोगिनी बनती है और वो तीसरा नेत्र प्राप्त करती है। शंकर के मस्तक पर जो नेत्र दिखाया जाता है वो खड़ा हुआ नेत्र है, माने वो एक ऐसा पाठधारी है जो पुरुषार्थ में कभी गिरता नहीं है, खड़ा हुआ रहता है। जैसे त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया और शंकर को और ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाया, ये भी पुरुषार्थ की बातें हैं। पुरुषार्थ में कोई सोया रहता है, कोई उठ के बैठ जाता है, कोई चलने लग पड़ता है, कोई पुरुषार्थ में दौड़ लगाता है, कोई पुरुषार्थ में दौड़ने लग पड़ता है, नहीं उड़ने लग पड़ता है। तो कौन सी स्टेज में रहना चाहिए पुरुषार्थ? सबसे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? उड़ते रहना। जो जितनी ऊंची पुरुषार्थ की उड़ान भरता है तो उसे ये दुनिया के लोग छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस दुनिया में उसकी बुद्धि ना लगेगी, क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज का नशा रहता है, छोटी छोटी बातों को इधर उधर करता जाएगा, छोटी छोटी बातों में इधर उधर उलझेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, दुखी करेगा भी नहीं। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, जो भगवान के मानने वाली जानने वाली आत्मनिष्ठ आत्मा होती है वो किसी को दुख भी नहीं देती और खुद दुखी होती भी नहीं, किसी प्रकार का उद्वेग पैदा नहीं करती, खुद भी उत्तेजित नहीं होती और दूसरों को भी उत्तेजना पैदा नहीं करती। ऐसी आत्मा को कहेंगे परमात्मा बाप का बच्चा। अभी बाप आए हैं, ये आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं बच्चे तुम देह आत्मा देह नहीं हो। किसी ने पूछो तुम कौन हो तो कहेगा हम डॉक्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम आदमी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। अरे हर जन्म में स्त्री पुरुष होते हो क्या? हर जन्म में डॉक्टर ही थे क्या? हर जन्म में मिनिस्टर थे ही क्या? नहीं, क्या है फिर? तो बाप बताते तो जो कि वो आत्मा हो, आत्मा ही थे, आत्मा ही हो और आत्मा ही रहोगे। ये सितारा आत्मा कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। हाँ, ये अच्छा पुरुषार्थ करती है तो देवता बन जाती है, मनुष्य से देवता बना जा सकता है, और खराब पुरुषार्थ करती है तो राक्षस बन जाती है। तो तीन कोटि हुई, मनुष्य से ऊपर उठा तो देवता बन गया, मनुष्य से नीचे गिरा, मनुष्यत्व से नीचे गिरा तो राक्षस बन गया। कलयुग में होते हैं सब राक्षस और सतयुग में होते हैं सब देवता। ये परिवर्तन कौन करता है? ये परिवर्तन कराने वाला एक बाप है, सब पतितों को पावन बनाने वाला बाप एक बाप, और उसका इंतजाम में इतना कहीं है। ऐसे नहीं कि हिंदू लोग ही भगवान को मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, भगवान को किसी न किसी रूप में सब मानते हैं। लेकिन असली रूप क्या है वो कोई को पता नहीं। असली रूप तब पता चलता है जब वो आकर के खुद ज्ञान देता है। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है जे ही जान होते ही दे जन आई और जान तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वो जानता है कि किस आत्मा को पहले उठाना है और ये आत्मा उठ सकती है और किन आत्माओं को बाद में उठाना है। बाद में उठेंगे तो ये सही चाल चलेंगे। ऐसे भी होता है ज्ञान में कोई कोई पहले आ जाते हैं, आ तो जाते हैं पहले, लेकिन बाप को पहचान न होने के कारण, पूरा पहचानने के न कारण वो उल्टी चाल चलते हैं, परमात्मा बाप का विरोध करने लग पड़ते हैं। ऐसी विरोधी आत्माएं वो फिर ज्ञान में से टूट पड़ती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसलिए गीता में लिखा है विपरीत बुद्धि विनश्यते, प्रीति बुद्धि विजयते, जो भगवान बाप को पहचानते हैं वो प्रीति बुद्धि बन करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रीति बुद्धि बनेंगे तो तन मन धन धाम सुहद परिवार सब परमात्मा बाप को सौंप देते, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। लेकिन कोई कोई ऐसे भी बुद्धू होते हैं परमात्मा बाप को पहचानने की बजाय आत्मा आत्मा भाइयों भाइयों को परमात्मा समझ बैठते, तो भाई को बाप बना दिया तो पूरी प्राप्ति तो हो नहीं सकती, अधूरी प्राप्ति करके रह जाते। अभी बाप कहते अच्छी तरह से ज्ञान की बातों पर गहराई से मन चिंतन मंथन करो, अभी से एक जन्म में अगर परमात्मा बाप से प्राप्ति कर ली तो 84 जन्म तक काम आती रहेगी। 84 जन्मों में सुखी शांत और प्रसन्न चित्त आत्मा बने रहे। भगवान बाप कहते मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं, लास्ट में तो हर आत्मा को नीचे गिरना ही है। क्यों? क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तो दिन का कोई महत्व नहीं होगा, तो रात भी चाहिए दिन भी चाहिए। तो हर आत्मा के जीवन में अज्ञान अंधेरी रात भी आती है और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सवेरा ही। ओम ऐसे तो इस ज्ञान में ये वरदान है कि जो भी इस ज्ञान में चलेगा उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। पूरा परिवार जब ज्ञान में चलेगा तो उसमें पति न चले पत्नी न चले ऐसा हो ही नहीं सकता, आज नहीं तो कल चलेगा जरूर। और फिर गांव का नाम तो आई विष्णुपुर, विष्णुपुर आई जाता है पति पिता पत्नी दोनों मिलकर के इकट्ठे पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ में पास हो जाए, दोनों का संस्कार मिल जाए, संस्कार कभी टकराए नहीं, उसको कहा जाता है विष्णु फरिश्ता का टेम्पल।